हरे कृष्ण। तो हमारा आज का कौन सा श्लोक है हम जो चर्चा करने वाले हैं? 7.15 सातवें अध्याय का 15वां श्लोक। तो जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो भी पढ़ ले, जो पढ़कर रहे हैं वो सुन ले। सातवें अध्याय का 15वां श्लोक किसने पढ़ा है? कितने पढ़ा है? देखा भी नहीं हमने तो, पढ़ने की बात कर रहे हो। श्लोक है, निकाल लिया सभी लोगों ने? सात में आ जाएगा 15वां श्लोक, मिल गया माता जी? तो जी पहली बार जा रहे हो उस रास्ते में, मिलना मुश्किल। पेज नंबर 252 नामाम दुष्कृतो नामूढाम प्रपदन्ते नराधमाम मायाया अप्रहत्ज्ञानम आसुरं भावमाश्रिताम। जरा जोर से पढ़ेंगे, नामाम दुष्कृतो नामूढाम प्रपदन्ते नराधमा मायाया अप्रहत्ज्ञानम् आसुरं भावमाश्रिताम्। नामाम दुष्कृतो नामूढाम् प्रपदन्ते नराधमा मायाया अप्रहत्ज्ञानम् आसुरं भावमाश्रिताम्। तो इसका अनुवाद है, जो निपट मूर्ख हैं, पहली बार नहीं बोल दिया, जो मनुष्यों में अधम हैं, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। ये अनुवाद किसके द्वारा लिखा गया है? श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। इस डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद की जय है। ये समझने वाली चीज है, इसमें चार प्रकार के लोगों का वर्णन है। सबसे पहले है मूढ़ाम, फिर है नराधमाम, फिर माया अप्रहत ज्ञानम, और फिर आसुरम। तो इसको हमें समझना पड़ेगा। भगवान के नामों का उच्चारण करेंगे सभी लोग मिलकर। ओम ज्ञानतिविरंधस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुर्वे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयमरूपं कदामयं ददाति शब्दकान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरुर्श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुसहितं साधुगुरुं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरूपस्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्रीराधर श्रीवासादि गौरवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे।
निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश कारणे।
हरे कृष्णा। तो समय हमारे पास बहुत कम है सभी के पास, जैसे गुरु जी बता रहे थे 8:30 हो चुके हैं और अब हमको सिर्फ आधे घंटे ही प्रवचन का समय बचा, क्योंकि आप लोग समय पर आए इसके कारण समय कम बचा है। अगर समय पे आए तो क्या होगा कि समय पर शुरू होगा और समय पर हम ज्यादा कृष्ण कथा का श्रवण कर पाएंगे। तो इसमें चार प्रकार के लोगों का वर्णन है इस श्लोक के अंदर। सबसे पहले है मूढ़ांग। मूढ़ांग तो बुरा मत मानिएगा, मूढ़ांग का संस्कृत में अगर हम शब्द है मूढ़ांग, उसको हिंदी अगर कन्वर्जन उसका ट्रांसलेशन करें तो डायरेक्ट क्या है, मूर्ख। शीला प्रभुपाद बोलते हैं खजा। तो आप बुरा मत मानिएगा, मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा शास्त्र में बताया गया है कि जो लोग भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते हैं वो लोग कौन है, मूर्ख है और गधे के समान है। गधा कैसा होता है कि उसके सिर पर एक व्यक्ति बैठ जाता है और एक डंडे में घास बांध लेता है और क्या करता है, कहता है चल। तो गधा क्या सोचता है कि थोड़ी दूर चलूंगा तो घास मिलेगी, और वो चलता रहता है, लेकिन जितना चलेगा घास उतनी आगे चली जाएगी। ऐसे ही हमारा भी जीवन है, हम कृष्ण की शरण छोड़कर एक गधे के शरीर अनुसार क्या करते हैं, उस सुख के पीछे भाग रहे हैं जो कि हमसे कभी प्राप्त होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान ने इस पृथ्वी लोक को क्या बनाया है, दुखों का गोडाउन बनाया है। आपने कभी देखा है दो गोडाउन होते हैं दुकानों में, उसके अंदर जैसे गेहूं का गोडाउन है तो गेहूं के गोडाउन में क्या मिलेगा, गेहूं मिलेगा, है ना। तो वैसे ही ये दुखों का गोडाउन है, गोडाउन समझते हैं, और इसमें सुख का शोरूम बना रखा है। शोरूम में जो चीज दिखाई देती है एक्चुअली गोडाउन में वो चीज होती नहीं है। तो देखा जाए तो असलियत में सुख है नहीं, जैसे शोरूम की चीज आपको कभी प्राप्त नहीं होगी। आप कभी बोले दुकान में जाके अरे भैया ये वाला शर्ट हमको दीजिए, तो बोलेंगे कि अंदर से निकाल कर देते हैं, क्योंकि जो दिख रहा है वो असलियत में वो चीज वो नहीं है जो आपको गोडाउन से दे रहे हैं। तो एक्चुअली दिखता है कि हाँ सुख है, लेकिन वो छलावा है, प्रतिबिंब है। असलियत में तो ये दुख का गोडाउन है, और दुख के गोडाउन में कभी सुख मिलेगा क्या, कभी नहीं मिलेगा। तो वो मूर्ख व्यक्ति है जो कि कृष्ण को छोड़कर क्या करते हैं, इसके पीछे सुख के पीछे भागते हैं। बताते हैं कि लोग इतने ज्यादा मूर्ख हैं कि वो मनुष्यों के ऊपर भी निर्भर हो जाते हैं, और हम भी ऐसे ही हैं। आप देखिए भगवान का सारा छोड़कर कभी कोई मुसीबत आए तुरंत फोन नंबर उठाकर अपने प्रियजनों को बुलाने लग जाते हैं। बुलाते हैं कि नहीं, ये आ जाए वो आ जाए, मेरी मदद ये कर देगा वो कर देगा, लेकिन असलियत में देखा जाए तो कोई किसी की मदद नहीं कर सकता। किसी के पास क्या क्षमता है कि कोई व्यक्ति किसी की जान बचा ले, बचा सकता है। जब कोई व्यक्ति हॉस्पिटलाइज होता है तो डॉक्टर के जो रिश्तेदार होते हैं ना, डॉक्टर से बोलते हैं डॉक्टर साहब देखिए हमारे ये है बहुत प्रिय है, आप कुछ भी करिए, पैसे की चिंता मत करिए, बस आप हमारे रिश्तेदार को, हमारे माँ हमारे पिता या जो भी चाचा ताऊ, इनको बचा लीजिए। लेकिन क्या डॉक्टर के हाथ में है बचाना या मारना, नहीं कर सकता। तो फिर हमारी प्रार्थना वो व्यर्थ जा रही है ना, वो प्रार्थना व्यर्थ जा रही है। तो हमें किससे प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान कृष्ण से करनी चाहिए। लेकिन लोग वह मूढ़ांग है, मूर्ख हैं जो क्या करते हैं, रिश्तेदार या परिजनों के ऊपर निर्भर हो जाते हैं। ऐसे ही एक कथा आती है कि ये गजेंद्र थे, गजेंद्र एक हाथी जिनका पिछला जन्म राजा इंद्रद्युम्न का हुआ, और इस जन्म में वो क्या बने, एक गजेंद्र हाथी बन गए। और गजेंद्र हाथी बनकर वो चल रहे थे मदमस चाल में अपनी हाथियों पर, अपनी हथनियों के साथ में, ये मेरी हथनी है, ये मेरी हथनी है, और सबके साथ में क्या कर रहे थे, पार्टी टाइम घूम रहे हैं, इधर से खाएं पत्ते इधर से खाएं, जैसे लोग करते हैं ना रिश्तेदारों से। अब यहाँ नहीं आए लोग प्रवचन के दौरान, लेकिन क्या करेंगे, गाड़ियों में बैठेंगे, म्यूजिक ऑन करेंगे, शादियों में नाचेंगे, रोड के ऊपर परिजन पर निर्भर है। मैं वो लोग बोलते भी हैं अरे भगवान का अगर हम पास गए तो हमारा जब दुख होगा तो भगवान आएगा क्या, रिश्तेदार तो आएंगे कम से कम, कंधा देने के लिए भी चार लोगों की जरूरत होती है, भगवान आएंगे क्या। लेकिन देखा जाए तो भगवान की अगर इच्छा नहीं होगी तो रोगों के होते हुए भी कोई भी नहीं आएगा। इसलिए भगवान कहते हैं आस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे, आस्मिन रुष्टे जगत रुष्टे। अगर मैं संतुष्ट हूं तो पूरा जगत संतुष्ट हो जाएगा, और मैं रुष्ट हूं तो पूरा जगत रुष्ट हो जाएगा। आप एक पेड़ लीजिए, उसकी डाली काट लीजिए और काट के अपने घर ले जाइए, क्या वो हरी भरी रहेगी, अरे डाली तो उसी पेड़ की है, और आप उसे रोज पानी भी दे रहे हैं, लेकिन वो हरी भरी क्यों नहीं है, क्योंकि वो किससे अलग हो चुकी है, सकते हैं। इसी तरह से वो रिश्तेदार जो कि कृष्ण से जुड़े हुए हैं क्योंकि वो भगवान के अंश हैं, माम एव अंशो जीव लोक जीव भूत सनातना, इस पूरी पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं वो कौन है, मेरे अंश हैं। और वो किससे अलग है, वो डाली पेड़ से अलग है तो कभी हरी भरी रहेगी, इसलिए वो मुरझाई हुई दुखी पीड़ित दिखाई दे रही है। तो क्या करना चाहिए, हमें उस डाली को तोड़ना नहीं चाहिए, किससे जोड़ देना चाहिए, वापस उस पेड़ से जोड़ देना चाहिए। वो कौन है वो पेड़, भगवान का नाम। जब हम उससे जुड़ेंगे स्वतः डाली हरी भरी होने लगेगी, पत्ते हरे भरे होने लगेंगे। सिर्फ जड़ में पानी डालिए और फिर देखिए कि पूरा पेड़ हरा भरा हो जाएगा। ऐसे ही वो गजेंद्र मूर्ख था जो कि क्या कर रहा था, चला जा रहा था कहां, नदी के किनारे, और जाकर क्या करना चाह रहा था, जल क्रीड़ा, जल में जाकर हथनियों के साथ क्या करेगा, वाटर स्पोर्ट्स। आजकल लोग करते हैं ना, ऋषिकेश जाते हैं, गोवा भी जाते हैं, बड़े बड़े बैलून और स्पोर्ट्स गाड़ियों में बैठकर लड़के लड़कियां या स्त्री पुरुष क्या करते हैं, जाते हैं, बोलते गोवा गए एडवांस, बोल रहे सोच नहीं रहे कि नीचे जा रहे हैं और लग क्या रहा है एडवांस। आप देखिए पूर्व जन्म में लोग, पिछले जन्म में अभी और कुछ पिछले समय में द्वापर युग में लोग सोने की थालियों में खाना खाते थे, और हमारे ही घर के अगर हम देखें 300-400 साल पहले पीढ़ी में लोग चांदी की थालियों में खाना खाते थे, और कुछ 100 साल पहले देखें तो लोग जो है पीतल की थालियों में खाना खाते थे, फिर तांबे और कांसे में खाने लगे, और अभी क्या हालत है, अल्यूमिनियम स्टील, और अभी तो उससे भी बदतर हो गया है। अभी प्रसादम जो आपको मिलेगा इस क्लास के बाद किसमें मिलेगा, थर्माकोल और प्लास्टिक प्लेट में। अब इसे क्या बोलते हैं, प्रभु जी वी आर एडवांसिंग नाउडेज, एडवांस हो रहा है हमारा एडवांसमेंट, है ना। मूर्ख है हम, मूढ़ा हम, क्योंकि भगवान की शरण नहीं ली, हम दुर्गुण हो रहा है हमारा, नीचे जा रहा है स्तर, फिर भी हमको लग रहा है हम बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, छाती चौड़ी करके घूमते हैं, है ना। 36 इंच बोलते हैं, 36-42 ऐसे बोलते हैं, कोई फायदा नहीं है उसका, है ना। 56 इंच पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, वो कोई फायदा नहीं है उसका छाती चौड़ी करने का। क्यों, क्योंकि असलियत क्या है कि हम भगवान से अलग हो चुके हैं। तो ऐसे वो गजेंद्र जल क्रीड़ा करने जा रहा था, और जाकर उसने क्या किया, जैसे ही जल में क्रीड़ा कर रहा था वहां एक ग्रह मगरमच्छ बैठा था, इंतजार कर रहा था कब मेरा भक्षण भोजन आएगा। जैसे ही वो हाथी आया उसने तुरंत उसके पैर पकड़ लिए, जो पिछले जन्म में क्या था, एक गंधर्व था हुहू नाम का, और वो गंधर्व जो था उसने एक ऋषि को, देवल ऋषि स्नान कर रहे थे तो उनको स्नान करते वक्त पीछे से जाकर उनके पांव पकड़ लिए, तो उन्होंने श्राप दिया क्योंकि हुहू नाम का जो गंधर्व था, गंधर्व लोक के व्यक्ति जो है वो गायक होते हैं और मनोरंजन करते हैं सारे अन्य लोगों के देवताओं का, तो वो हुहू नाम का जो गंधर्व था उसने क्या किया, ड्रामा किया कि देवल ऋषि स्नान कर रहे हैं तो जल के नदी के नीचे गया और पैर पकड़ लिया। जैसे ही पैर पकड़ा देवल ऋषि घबरा गए, और घबरा गए तो उन्होंने कहा मगरमच्छ ने पकड़ लिया, और चिल्लाने लगे, तो फिर इतनी देर में देखा वो बाहर आ गया। जब बाहर आया तो हंसने लगा, हा 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 हा, देखा क्या मूर्ख बनाया। तो बोले तू जो मगरमच्छ की एक्टिंग किया, अब तुम मगरमच्छ बन गया। तो उसको ग्रह बना दिया। उसने बहुत प्रार्थना करी कि भगवान मुझे माफ कर दीजिए कि मैं जो हूं मगरमच्छ नहीं बनना चाहता, मेरे को मुक्त कर दीजिए। बोले तेरी मुक्ति का कारण तो कौन बन सकता है, सिर्फ मुकुंद, क्योंकि हर एक की मुक्ति का कारण कौन है, मुकुंद। मुकुंद का अर्थ है मुक्ति प्रदाता इति मुकुंद, द मतलब प्रदान करने वाला, जिस भी नाम के पीछे द लगे मुकुंद, द मीन्स दाता, प्रदान करने वाला, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, लेकिन फिर भी लोग एक दूसरे से मांग रहे हैं, इससे लोन उससे लोन, इससे किराया उससे किराया, कोई नहीं किसी को कुछ दे सकता। हर जो व्यक्ति आपको दे भी रहा है ना उसके पीछे कोई कारण है, लेकिन सब कारण कारण कौन है, कृष्ण। भगवान कह रहे हैं सर्व कारण कारण हम, हर कारण का कारण मैं हूं, तो फिर हम यहां पर कारण क्यों ढूंढ रहे हैं, हम क्यों नहीं कृष्ण को हर चीज का कारण समझकर अपने दोनों हाथ ऊपर करके और भगवान से प्रार्थना क्यों नहीं करते, क्या बोलना चाहिए, अरे
कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
हाँ ऐसे करना चाहिए। तो वो जो गजेंद्र था उसको जब ग्रह ने पकड़ लिया तो जोर जोर से क्या बोला, कृष्ण मुकुंदा नहीं, क्या बोला, अरे पत्नियों बच्चों बचा लो, मारा गया, ग्रह ने पकड़ लिया, मगरमच्छ ने पकड़ लिया, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। तो पत्नियां बोली अरे डियर एलिफेंट हस्बैंड क्यों डरते हो, माय डियर व्हाई यू फियर, लोग बोलते हैं क्यों डर रहे हो, हम है ना। तो सबने क्या किया, अपनी अपनी सूंड लेकर एक एक की पूंछ में बांध ली, चेन बना ली ना पूरी,
सबसे आगे है सबसे बड़ी हथनी, उसके पीछे सेकंड वाइफ, थर्ड वाइफ, फोर्थ वाइफ और सारी वाइफ, और उसके पीछे बच्चे लाइन बना के खड़े होकर और खींचना के जोर से, जोर लगा के, भैया हाथी को बचा लो, भैया जोर लगा के, भैया खींचे जा रहे हैं। लेकिन क्या होने वाला था? कुछ नहीं होने वाला था। सब धीरे धीरे एक एक करके, एक एक करके बच्चे बोले, पिताजी आप तो गए गए, साथ में हमें भी लेके जाओगे? तो हम तो चलते हैं अपने काम में, हमें तो और भी काम है, पूरा जीवन पड़ा है, हम आपके साथ कहाँ रहेंगे। तो बच्चे चले गए छोड़ के। लेकिन हथनिया बोली, डियर हमने तो आपके साथ सात जन्म का साथ निभाने का वादा किया था, तो हम कैसे छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन ये सात जन्म का चक्र जो है ना, ये नकली है। आपको मालूम, आप में से कितने लोग मानते हैं कि पति पत्नी जो है वो सात जन्म का जोड़ा होता है रिश्ता? जानते हैं क्या मानते हैं माता जी, सात जन्म का है या एक जन्म का है? पत्नियां मानती हैं सात जन्म का होता है, नहीं होता है? आप क्या कहते हैं, होता है नहीं होता है? आप क्या कहते हैं, होता है नहीं होता है? मालूम नहीं है। आप क्या कहते हैं, आपकी शादी नहीं हुई है? हुई है, सात जन्म की है, कौन सा जन्म? नहीं मानते? हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा बोला। किसने बोला एक जन्म निकल गया? हाँ, ये बुद्धिमान है। तो ऐसे ही एक बार इस होलीनेस राधा गोविंद महाराज बता रहे थे कि वो कलकत्ता में 1986 के करीब कलकत्ता में एक मित्र के पास मिलने गए, तो उनकी पत्नी छोड़कर चली गई थी उनको। तो ये जब हिज होलीनेस राधा गोविंद महाराज उनके पास पहुंचे, अपने मित्र के पास, तो वहां पर एक बिहार के एक वो आए हुए थे, क्या कहते हैं, ज्योतिषाचार्य, उनके घर पे उन्होंने बुलाया था उनको, और ये भी आ गए थे क्योंकि ये सन्यासी थे, तो ये भी आ गए, वो भी आ गया। ये बताएंगे अध्यात्म के बारे में, वो बताएगा ज्योतिष के बारे में। तो वो मित्र जो था बड़ा दुखी था क्योंकि उसकी पत्नी से छोड़कर भाग गई थी। तो महाराज बता रहे थे, कहते हैं कि इस व्यक्ति ने उस ज्योतिषाचार्य से पूछा कि बताओ भैया कि कितने जन्म मेरी पत्नी मेरे साथ रही जो कि अब छोड़कर चली गई, हमारा रिश्ता कितने जन्म का था, वो छोड़कर चली गई फिर भी आसक्ति इतनी है कि उसके बारे में सोच रहा है क्या, कि कितने जन्म मेरे साथ रही। तो ज्योतिषाचार्य ने सोचा कि अगर मैं अभी पाखंड करूंगा तो ये जो बैठे हैं ना आध्यात्मिक गुरु, ये पकड़ लेंगे कि भैया सात जन्म वाजनम कुछ नहीं होता, तो ये पकड़ लेंगे। तो उन्होंने उनकी तरफ देखा, तो महाराज बोले जब मेरी तरफ देखा तो मैंने भी सोचा कि चलो इस थोड़ा देखा जाए क्या ये गुण खिलाता है। तो गुण खिलाने के लिए उसको बोल दिया, हाँ हाँ बताओ बताओ कितने जन्म साथ रहे। तो वो सोचा कि सिग्नल मिल गया कि बोलना है, तो बोलने लगा। तो उसने अपना पोथी वोथी खोली, किताबें उठाई और बताने लगा, कहता है देखिए, आ हा 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 हा, वाह वाह वाह, आप तो सात जन्म पूरा साथ रहे। तो महाराज बोले, मैंने तुरंत पूछा सात जन्म साथ रहे, ये जन्म मिलाकर या ये जन्म छोड़कर? तो बोले कि, तो वो तुरंत से बोला ज्योतिषाचार्य, ये जन्म मिला के। तो बोले ये जन्म मिला के तो सात नहीं हुए, अभी तो आधे में छोड़ गई तो साढ़े छह हुए ना, तो सात जन्म का साथ कहाँ हुआ? तो वो बोला कि हाँ साढ़े छह क्या मतलब था, तो जन्म तो हो ही गया, मतलब सात तो हो ही गया पूरा। तो जैसे तैसे करके वो जोड़ रहा था, फिर व्यक्ति माना नहीं, अभी पूछता है सात जन्म में हम क्या क्या थे। तो ये भी अपना पूरा पाखंड किया, महाराज बोलते हैं वो बताने लगा एक एक करके, एक जन्म में तुम शेर शेरनी थे, एक जन्म में गंधर्व गंधर्वी थे, एक में देवी देवता थे, एक में सियार सियारनी थे, अभी तुम मनुष्य और स्त्री पुरुष भी हो। तो बड़ा खुश हो रहा था सुन सुन के, अच्छा सियार थे। इतनी आसक्ति है कि लोग मूर्ख बना देते हैं और लोग बनते हैं, इसीलिए इस श्लोक में यूज हुआ है क्या मूढ़ाम, मनुष्य पे निर्भर है, आसक्ति करते हैं एक दूसरे से लेकिन कोई फायदा नहीं है। ऐसे ही उस गजेंद्र की जो पत्नियां थी वो भी कुछ समय तक खींचो 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 करी और थोड़ी देर बाद छोड़कर चली गई, अरे कोई और हाथी मिल जाएगा, इसके साथ कहाँ टाइम वेस्ट कर रहे, तो मरने ही वाला है। बताते हैं कि 1000 साल युद्ध चलता रहा, वो भी देवी देवताओं के 1000 साल, हमारे जो 6 महीने होते हैं वहां का 1 दिन होता है। तो ऐसे 1000 साल युद्ध चला और उसके बाद जब वो बिल्कुल पस्त हो गए, त्रस्त हो गए, तो छोड़कर भाग गई सारी हथनियां, जब चली गई तो अकेला सोचा अभी तो मेरे में बहुत दम है, और लड़ता रहा लड़ता रहा लड़ता रहा। लेकिन जब देखा कि पानी जो होता है उसमें किसकी ताकत ज्यादा है, मगरमच्छ की, उसने पूरे हाथी को आधा खींच लिया। अगर पृथ्वी होती तो दूसरे पैर से उसने मगरमच्छ को कुचल दिया होता, मार दिया होता, लेकिन ये था पानी, इस पानी में वो खींच रहा मगरमच्छ उस हाथी को और ले गया आधे पानी तक पूरा, जब सूंड तक गर्दन तक डूब गया। तो फिर बोला क्या, स्मरण शक्ति बोलती है, उसकी पूर्व जन्म की स्मरण शक्ति जागृत हुई कि पिछले जन्म में मैं कौन था, राजा इंद्रद्युम्न था। तो मैंने क्या किया, भगवान की जो माला थी, ये जो माला, इसको प्रसादी माला बोलते हैं, इसको क्या किया, मेरे को मिली तो मैंने उतार के हाथी के गले में डाल दी। और हाथी ने क्या किया, जिस हाथी पे राजा बैठा था उस हाथी ने अपनी सूंड से उतार के अपने पैर में डाल दी, पैर में डालकर उस पे फायर रख भी दिया। तो कहते हैं कि अगर ये माला किसी बच्चे के पैर में या हमारे पैर में आई तो फिर उसको जिस ऋषि ने वो माला भेंट करी थी उसने श्राप दिया, क्या कि क्या बन जाओ, हाथी बन जाओ। जिस तरह तुमने मतहीन हाथी की तरह, पागल हाथी की तरह ये कार्य किया, तुम भी क्या बनो, हाथी बनो। और इस जन्म में हाथी बने, लेकिन पूर्व जन्म में जब वो राजा थे तो उन्होंने अनेकों यज्ञ किए, अनेकों भगवान के नामों का उच्चारण किया, और उनको पूर्व जन्म की वो स्मरण शक्ति के कारण याद आया क्या कि मैं एक भक्त था। और इस संसार से मुक्ति प्रदान कौन करा सकता है, मुकुंद, मुक्ति प्रदाता एक मुकुंदा, तो मुकुंद ही मेरी भक्ति में मेरी हेल्प करेंगे, मेरी मदद करेंगे। और अचानक ही उसने जोर जोर से बोलना शुरू किया, क्या मुकुंदा गोविंदा, मुकुंदा गोविंदा, और अपनी सूंड से उस ही जल में उत्पन्न एक कमल को उसने अपनी सूंड से तोड़कर और भगवान के चरणों में अर्पित किया कि मेरी फूल के कारण, माला के कारण मैं हाथी बना, तो भगवान मेरी मुक्ति करो और ये रखो। तो भगवान वहां आए और भगवान ने आकर अपना सुदर्शन चक्र जो था, जब भगवान बैठे थे द्वारका में, तो भगवान चतुर्भुज रूप में द्वारका में रहते हैं, तो भगवान ने जब सुना कि गोविंद मुकुंद मेरा नाम पुकार रहा है कोई, तो भगवान चल दिए बचाने के लिए। तो बीच में गरुण आए, जो गरुण भगवान के वाहन है, तो बोले बैठ जाओ मेरी पीठ पर भगवान, मैं लेके चलता हूं आपको कहां, उस हाथी के पास, गजेंद्र के पास। तो भगवान बोले कि हटो गरुण, जितनी देर तुमको फ्लाई करने में लगी और लैंड करने में लगी उतने में तो काम खत्म हो जाएगा वहां पे, तो मुझे तुरंत जाना है। तो भगवान ने क्या किया, गरुण तज पधारे, गरुण को त्याग करके भगवान वहां पर पधारे, वहां प्रेजेंट हो गए, प्रकट हो गए। और भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से किसको मारा, पहले मगरमच्छ को मारा, मगरमच्छ की गर्दन काट दी, और फिर बाद में हाथी को भी मुक्ति प्रदान करी। तो लोग प्रश्न पूछते हैं कि मगरमच्छ तो दुराचारी था, उसने तो एक हाथी को बेचारे को पानी पीते खेलते हुए को पकड़ लिया, फिर भगवान ने उसको मुक्ति क्यों दी, बता सकते हैं क्यों दी? इसलिए दी क्योंकि बोलते हैं कि जिसके कारण आप भक्ति में लगते हैं, जिसके कारण आप भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं, वो व्यक्ति तो पहले से ही मुक्त हुआ हुआ है, चाहे वो भक्ति करे या ना करे। हो सकता है कोई आदमी ऐसा हो जो आपको घूमते फिरते मिला हो, जो यहाँ आता हो और बोला हो कि आप कहाँ से आ रहे हैं, आपने पूछा तो वो बोला मैं आ रहा हूँ, एक थर्सडे प्रोग्राम चलता है, और फिर छोड़ के चला गया वो प्रोग्राम, लेकिन आप आने लगे और भगवान के नामों का उच्चारण करने लगे। तो जब आप भक्ति करेंगे और अंतकाल में अपना शरीर त्याग कर अगर भगवत धाम गए अपनी भक्ति के अनुसार, तो फिर क्या होगा, भगवान पहले ही उसको मुक्त कर दिए जिस व्यक्ति ने आपको भक्ति में लगाया, क्योंकि जिसके कारण भक्ति हुई वो व्यक्ति तो पहले से मुक्त है। इसलिए हमारे जीवन में जितने भी शिक्षा गुरु पद प्रदक्षक गुरु जितने भी हैं, जिनके कारण मिलने मात्र से, जिनके प्रवचन के मात्र से, जिनकी कथा के मात्र से, जिनके उपदेश संदेश के मात्र हमारा जीवन भक्ति में प्रगति करता है, तो ये नहीं सोचना चाहिए इनका क्या होगा, वो तो पहले से ही मुक्त है क्योंकि उन्होंने आपको भक्ति में लगाया है ना। इसलिए ऐसे परिजनों को, ऐसे गुरुजनों को कभी भूलना नहीं चाहिए, उनका थैंकफुल होना चाहिए, और सबसे ज्यादा थैंकफुल होना चाहिए श्रील प्रभुपाद का, जिनके कारण आज हम क्या कर पा रहे हैं, भगवान के नामों का उच्चारण कर रहे हैं, इस भगवद्गीता के शास्त्र को समझ पा रहे हैं, सरल भाषा में भगवद्गीता हमको मिली है। और अगर हम प्रभुपाद को धन्यवाद देना चाहते हैं तो एकमात्र कार्य करना चाहिए क्या, श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों को अध्ययन और उनका वितरण करना चाहिए। इतना शुभ मुहूर्त है, महीना है ये, कौन सा, गीता मैराथन, गीता जयंती 2 दिसंबर को आने वाली है, मोक्षता एकादशी के दिन, और उस दिन क्या करना चाहिए, गीता का वितरण करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति नहीं भी खरीदता तो आपको अपना धन, जिससे हमको बहुत ज्यादा लगाव है ना, कहते हैं ये धन तब तक रखते हैं हम लोग जब तक निधन नहीं हो जाता, निधन बोलते ना मरने को, जब तक निधन नहीं हो जाता, निधन, तब तक इस धन को हम पकड़ के रखते हैं अपने जीवन में। तो इससे पहले कि निधन हो जाए, इस धन का इस्तेमाल करिए, सदुपयोग क्या है, भगवान की सेवा में करिए, भगवान के शास्त्रों को खरीदें। अगर आपसे कोई नहीं खरीद रहा है, आपके प्रचार में अभी इतनी शक्ति नहीं है, तो उसको खरीद कर चाहे 2 किताब 4 किताब और चलते लोगों को रोक कर उन्हें प्रचार करें और उनको ये किताब दें, क्योंकि क्या पता अगर वो भक्त बन गया, आपकी भक्ति में भी अगर तकती नहीं है, लेकिन उसके कारण आप धाम जा सकते हैं, क्योंकि जिस तरह ये मुक्त हुआ आप भी मुक्त हो सकते हैं। तो इसलिए कोई भी मौका ना जाने दे। वो लोग बोलते ना प्रभु जी हमारी साधना में दम नहीं है, हमारी साधना में दम नहीं है, अगर हमारे प्रचार में दम है और कोई भक्त बन गया, कोई भी एक एक शुद्ध भक्त, तो आपकी तो टिकट पक्की है, चाहते नहीं चाहते हैं। तो इसलिए इस प्रचार में कोई कमी मत छोड़िए। देखिए श्रील प्रभुपाद जी के बारे में एक बात, श्रीपाद हृदयानंद बाबा जी महाराज हैं, ये राधा कुंड में इनका जन्म हुआ था। तो वो बताते हैं कि राधा दामोदर मंदिर देखा है आप में से कितनों ने, वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर, राधा दामोदर मंदिर में एक रूप गोस्वामी की समाधि है, देखिए रूप गोस्वामी की समाधि आपने देखी, और किसने देखी है, राधा दामोदर मंदिर में रूप गोस्वामी की समाधि। तो समाधि रूप गोस्वामी के भजन कुटीर है और वहां समाधि भी है, मतलब भजन करते थे वहां बैठकर, और वहां बैठकर एक एक समाधि, मतलब वहां उनको समाधिस्थ किया गया है। शरीर छोड़कर जब वो वापस गोलोक धाम गए तो उसके बाद उनका शरीर वहीं रखा गया उसी राधा दामोदर मंदिर में। तो ये जो हृदयानंद बाबा जी महाराज थे ये बताते हैं कि ये राधा दामोदर मंदिर के अगले कमरे में रहते थे, घर में रहते थे। तो वो बताते हैं कि रात को रोने की आवाजें आती थी, बहुत जोर जोर से रोने की आवाज आती थी। तो उनको लगता था कौन रो रहा है इस कमरे में, क्या है ये, यहाँ पर रोने की आवाजें आती है, रूप गोस्वामी की समाधि से रोने की आवाजें आती है। कह रहे कोई भी इतना बड़ा महान आचार्य रोएगा क्यों, रोने की आवाजें आती हैं। तो एक दिन उन्होंने क्या देखा कि पूर्ण चंद्रमा था, जैसे पूर्णमासी कहते हैं ना, पूर्ण चंद्रमा था और उस दिन रात का समय था और फिर जोर जोर से रोने की आवाजें आ रही थी। फिर उस पूर्णमासी की अगले दिन सुबह उन्होंने क्या देखा कि फिर से रोने की आवाजें आ रही हैं। तो वो इस बार क्या किए, उतर कर आ गए अपनी छत से नीचे समाधि के पास और देखने लगे कि आज देखूंगा मंगला आरती के बाद कि कौन है जो यहाँ रोता है। तो जब आए तो क्या देखा, वहां पर हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदन स्वामी श्रील प्रभुपाद, जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य थे, फाउंडर आचार्य, वो अपने हाथ में एक झाड़ू लेकर समाधि को साफ कर रहे थे और साथ साथ क्या कर रहे थे कि मैं आपकी समाधि को साफ कर रहा हूं, आप क्या करिए मेरे हृदय को साफ करिए। कहते हैं वैष्णवों की जो समाधि है वहां पर जाकर हमको ध्यान पूर्वक जप करना चाहिए, वहां जाकर हमको सेवा करनी चाहिए, समाधि पे झाड़ू लगाए साफ करें उसको, है ना। अगर ऐसा करेंगे तो हमारा हृदय तुरंत बहुत प्रगति, जैसे होता है एक सीढ़ी से जाना और एक लिफ्ट से जाना, तो लिफ्ट से जाने वाली स्थिति होती है भक्ति में आगे। और फिर प्रभुपाद वहां रोकर क्या बोल रहे हैं कि रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी हे भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी, मैं आपके ऊपर प्रार्थना करता हूं कि आप ही की शक्ति के कारण मैं क्या कर पाऊंगा, जीवन में प्रचार कर पाऊंगा, वरना मुझ में कोई शक्ति नहीं है। तो इस तरह से अगर हम प्रार्थना करें भगवान के आगे तो सचमुच भगवान सुनते हैं। और क्या हुआ कि इस प्रार्थना का फल ये हुआ कि 1965 की ये बात है, और 1965 में क्या किया, श्रील प्रभुपाद ने तुरंत कुछ महीनों बाद विदेश चले गए और विदेश जाकर क्या किया, इस्कॉन संस्था की स्थापना करी। तो देखिए इतनी शक्ति है प्रार्थना के अंदर। तो आप इधर उधर मनुष्यों से मांगे कि हेल्प कर दो यार, थोड़ा सा हेल्प कर दो यार, जैसे गजेंद्र मांग रहा था, लेकिन एट लास्ट किसकी मांगी, मुकुंद की। ऐसे हमें गुरुजन वैष्णव जन और कृष्ण सिर्फ उनके शरण ग्रहण करनी चाहिए, अगर वो करें तो कभी भी वो वेस्ट नहीं जाए, फ्रूटफुल हमेशा फ्रूटफुल होती है। और मान लीजिए अगर फल नहीं भी मिला तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है अगर फल नहीं मिला, बोले प्रभु जी हम तो 6 महीने प्रार्थना किए, अपनी गलती नहीं मानेगा व्यक्ति कि मेरी गलती थी प्रार्थना में, क्या बोलेगा भगवान ने फल नहीं दिया अब हमने छोड़ दिया है, अब हम भक्ति नहीं करते हैं। एक बार ऐसे ही हुआ, एक घर के बाहर एक भिखारी जो है भजन गा रहा था, क्या गा रहा था, भगवान के नामों का जप कर रहा था जोर जोर से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, खूब जोर जोर से भगवान के नामों का जप कर रहा था, कीर्तन कर रहा था, और उस घर के आगे खड़े होकर बोल रहा था कि क्या करो, मैया एक रोटी दे दो, मैया एक रोटी दे दो। तो जो औरत थी इस घर की मालकिन, वो आई एक रोटी लेकर अपने हाथ में, और क्या की उस कीर्तन करने वाले भजन करने वाले उस भिक्षुक को नहीं दी। तो उसका जो पति था उस मालकिन का, घर का जो मालिक था, वो आया और बोला पत्नी से, क्यों समय बर्बाद करती हो, दो ना, वो इतनी देर से मांग रहा है कि मैया एक रोटी दे दो और फिर कीर्तन करता है, तुम देती क्यों नहीं हो। तो बोली कि इसका जो वाणी है वो बहुत मधुर है, तो मुझे सुनने में बहुत आनंद आ रहा है, अगर मैंने इसको रोटी दी तो क्या करेगा, चला जाएगा, और अगर नहीं दी तो ये खड़ा होकर गाता रहेगा जब तक मैं इसको रोटी नहीं दूंगी। तो ऐसे ही हो सकता है कि कृष्ण से हम प्रार्थना करें और हमें फल ना मिले, तो ये नहीं सोचना चाहिए कि प्रार्थना अच्छी नहीं है, हो सकता है भगवान को ज्यादा अच्छी लग रही है, इसलिए वो कह रहे हैं कि अगर फल दे दिया तो ये आगे चला जाएगा। है, फिर किसी देवी देवता के पास चला जाएगा। इसलिए बेहतर है कि अभी प्रार्थना करने दो और क्या करो, इसको फल ले थोड़ी देर से दो। इसलिए जब प्रार्थना करें तो यही सोचना चाहिए कि भगवान को हमारी प्रार्थना अच्छी लग रही है। फल दें या ना दें, हमारा कर्तव्य क्या है, भगवान के नामों का जप करते रहना है ना। और फिर बताया है ये नराधम, नराधम प्रवृत्ति के लोग होते हैं, नरों में अधम, नरों में सबसे गिरे हुए कौन है, ऐसे ऐसे लोग हैं जो बताए गए हैं, साहित्यकार होते हैं ना, वो होते हैं नरों में गिरे हुए। पता नहीं क्या क्या उल जुलूल बातें करते हैं, भगवान के आगे देवी देवताओं के बारे में लिखते हैं। उनका संग वर्जन त्याग करना चाहिए हमको, हमें भक्तों का संग करना चाहिए, लेकिन ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए जो हमारे ऊपर क्वेश्चन करें, जो हमारे को भक्ति से दूर ले जाएं, ऐसे लोगों का बिल्कुल भी संग नहीं करना चाहिए। जैसे एक बार अकबर जो थे वो बीरबल से प्रश्न पूछे, क्या कि तुम्हारा भगवान कहाँ है और तुम्हारा भगवान कैसे मिलता है और तुम्हारा भगवान क्या करता है। तो बीरबल से जब ये प्रश्न पूछे तो बीरबल बोला कि इसका उत्तर तो मेरे पास नहीं है, कि भगवान कहाँ है, भगवान कैसे मिलता है और भगवान क्या करता है। तो बोले घर गए तो बोले बीरबल बोले अकबर से कि महाराज मैं इसका उत्तर आपको कल सुबह दूंगा। तो घर गए तो टेंशन में थे, तो उनका पुत्र बोला कि पिताजी लगता है जब बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, क्या हुआ। बोले अकबर ने बोला कि अगर प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो मैं तुम्हारा क्या करूंगा, सर कलम कर दूंगा, नौकरी से निकाल दूंगा। तो मैं बड़ा टेंशन में हूं कि मैं कैसे अपने भगवान को रिप्रेजेंट करूं, कैसे अपने भगवान के बारे में बताऊं कि क्या भगवान कहाँ है, मेरा भगवान क्या कैसे मिलता है और भगवान क्या करता है। तो पुत्र बोला कि पिताजी आप चिंता ना करें, बस मुझे सुबह अपने साथ महल ले चले। तो पिताजी अब पुत्र को अपने साथ महल ले गए और बीरबल जब अकबर के सामने पहुंचे, अकबर बोले हाँ बीरबल प्रश्न का उत्तर मिल गया। तो बोले देखिए ये प्रश्न तो इतना आसान था कि इसका उत्तर तो मेरा पुत्र ही दे सकता है, तो मेरे को तो सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो उन्होंने इस तरह से बोला। तो पुत्र से पूछा अच्छा तुम उत्तर दोगे, तो बोले हाँ। तो बोले अच्छा बताओ मेरे प्रश्न का उत्तर। बोले पूछिए कि तुम्हारा भगवान कहाँ है। तो पुत्र बोला बीरबल का कि आप एक काम करिए, आप एक दूध का ग्लास मंगवाइए, है ना, दूध का पात्र एक ग्लास, और कुछ शुगर मतलब चीनी, कुछ शक्कर मंगवाइए चीनी, और फिर क्या करिए उसको दोनों को मिलाइए। मिलाया तो बोला आपने चीनी देखी। कह रहे हाँ देखी। कह रहे आप दिख रही है। अब नहीं दिख रही है। कहाँ गई। कह रहे अब तो पता नहीं कहाँ गई। कह रहे पियो। पिया। मीठा लगा। कह रहे हाँ लगा। तो बोले इसी तरह से भगवान भी हैं, है भी और नहीं भी, अचिंत भेदा भेद। लेकिन जब हम उनके नामों का जप करते हैं क्या बोलते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जब हम ऐसे तरह से बोलते हैं तो ये मिठास लगती है कि नहीं लगती है, लेकिन दिखता नहीं है। जैसे दूध में चीनी दिखती नहीं है लेकिन दूध मीठा लगता है, ऐसी भगवान दिखता नहीं है लेकिन हमें उसका फीलिंग, उसका एहसास होता है जब हम उनके भगवान के नामों का जप करते हैं। बोलते हैं नाम चिंतामणि चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्तो अभिन्नत नाम नामिनो। भगवान का नाम और भगवान में कोई भेद नहीं है। ये क्या है, चिंतामणि, छूते ही सोना बन जाएंगे हम, एकदम खरा सोना, 24 कैरेट गोल्ड, 22 कैरेट नहीं, पूरा 24 कैरेट खरा सोना। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, भगवान के नामों की शरण लेनी पड़ेगी, इधर उधर किसी की और की शरण की जरूरत नहीं। तो अकबर समझ गए इस चीज को, बोले वाह इसका उत्तर तो मिल गया। और दूसरा तुम्हारा भगवान कैसे मिलता है। तो उन्होंने कहा कि आप क्या करिए थोड़ा सा दही मंगवाइए। मंगवाया। बोले इस दही में मक्खन दिखता है। कह रहे नहीं दिखता। तो कह रहे हैं अगर आप इसको रई लेकर इसको क्या करिए लस्सी बनाइए, मथिए, तो मंथन जब करेंगे तो बोले ठीक है करिए। जब करा तो क्या हुआ, थोड़ी देर बाद उसमें से मक्खन निकला। दिखा कि नहीं दिखा। बोले दिखा। पहले नहीं दिख रहा था। नहीं दिख रहा। इसका क्या मतलब है कि भगवान यहां भी है वहां भी है। इतो नरसिंगा ततो नरसिंगा यतो यतो आमी ततो नरसिंगा। जहां जहां जाएंगे वहां वहां नरसिंह दिखेंगे। बाहिर नरसिंगा हृदय नरसिंगा। नरसिंह बाहर भी है और हृदय में भी परमात्मा रूप में है ना। नरसिंहम आदिम शरणम प्रपदे। और ऐसे भगवान की शरण हमको ग्रहण करनी चाहिए। तो हमें क्या करेंगे, जब भगवान के नामों के जप के द्वारा मंथन करेंगे इसी जगह का, तो अभी इस दीवार के पीछे पूछा जाए क्या है, तो लोग बोलेंगे गार्डन है ना, या फिर ये दीवार के पीछे क्या ग्रिल है, इस दीवार के पीछे कोई व्यक्ति खड़ा है, ऐसे बोलेंगे। लेकिन कोई ये नहीं बोलेगा ये दीवार के पीछे क्या है, नरसिंगा कृष्णा है, है कि नहीं है। धीमी देर लग रही बोलने में, तो जी क्या विश्वास है हमारा है। जब प्रहलाद के लिए आ सकते हैं तो अभी क्यों नहीं आएंगे, मिलके तोड़ दें। पहले प्रोजी कम्युनिटी सेंटर वाले हमें बोल, हाँ कम्युनिटी सेंटर बड़ा हो जाएगा। नरसिंह आएंगे, विश्वास की जरूरत है। जब विश्वास से मंथन करेंगे भगवान के नामों के जप के द्वारा तो कृष्ण क्यों नहीं मिलेंगे। तो बीरबल के पुत्र ने जब समझाया तो अकबर समझ गए, बोले बहुत सुंदर, बोले तुम्हारा भगवान लेकिन खाली रहता है, मिलता है मिलाता है, करता क्या है आखिर सारा दिन। बोले इसके लिए तो आपको थोड़ा सा और समझना पड़ेगा, क्या आपको मुझे गुरु मानना पड़ेगा। और इसमें क्या है, बच्चों को जैसे बहलाते हैं तो अकबर जानता था कि मैं तो शक्तिशाली हूँ, बोला ठीक है आज से तुम मेरे गुरु हो गए, ठीक है खुश। अब बोलो बताओ कैसे मिलता है तुम्हारा, क्या करता है तुम्हारा भगवान। तो बीरबल का पुत्र बोला कि देखिए इसके लिए थोड़ा सा और करना पड़ेगा, क्या आप इधर खड़े हो जाइए जहां मैं खड़ा हूं और मुझे वहां बिठाइए तब मैं उत्तर दे पाऊंगा। तो वो नीचे खड़ा हो गया और उसको वहां बिठा दिया, बोले आप उत्तर दो। बोले इसके लिए थोड़ा सा और करना पड़ेगा, क्या। बोले जो आपका मुकुट है वो मेरे सिर पे लगाना पड़ेगा और फिर मैं उसका उत्तर दे पाऊंगा। तो अकबर बोले ठीक है, बच्चों का खेल है, जैसे हम करते हैं अपना सामान बच्चे को दे देते हैं, मोबाइल ले लो बेटा, कैप लगा लो, स्कूटर पे बैठ जाओ, तुम ऑफिस जा रहे हो, बच्चा भी खेलता है। तो उसने भी सोच के बच्चे को बैठा दिया और बोला कि लो बैठो गद्दी पे, आप बोलो अब क्या कर, कैसे क्या करता है तुम्हारा भगवान। बोले आप अभी भी नहीं समझे, आप बड़े मूर्ख हैं, मुड़ाम है। कह रहे क्यों, यही तो करता है, पल भर में राजा को रोड पे खड़ा कर देता है और रोड वाले को बैठा के राजा बना देता है। तो इस तरह से बीरबल के पुत्र ने समझदारी से उत्तर दिए अकबर के प्रश्नों के। तो ये जो नराधम व्यक्ति हैं इनको इसी तरह से हमको प्रीचिंग करना चाहिए, अन्यथा हम इन लोगों का संग नहीं करना। छिले प्रभुपाद कहते हैं डोंट ट्राई टू टेक एसोसिएशन ऑफ नॉन डिवोटीज, ट्राई टू गिव योर एसोसिएशन। लोगों का प्रश्न होता है ना गृहस्थ जीवन में, संसार में, नौकरी में, कि प्रभु जी हमारे साथ जो लोग हैं वो क्या है, बस नरभक्षी रहने की कमी रह गई, सब कुछ खाते पीते हैं और हमें भी खींचना चाहते हैं, हम कैसे बचें। तो आप जब भी जिससे भी मिलें उसे भगवान के नामों का प्रचार करें। और अभी तो सबसे अच्छा मंत्र है, चार गीता ले लीजिए गौरव प्रभु जी से और क्या करिए, ऑफिस में जाके जो ज्यादा बोले उसको ये नराम मुड़ाम वाला 7 अध्याय का 15वां श्लोक खोल के दिखाइए, बोले आप शरण में नहीं आ रहे हैं हम तो आ गए हैं, है ना। तो इस तरह से आप जब उनको बताएंगे तो उन्हें समझ में आएगा, कहिए प्रभु जी ये मेरी तरफ से फ्री ले लीजिए 120-130 रुपए की, क्या करिए आप बस इसके 7वें अध्याय का 15वां श्लोक पढ़िए और खोल के उन्हें पढ़ाए, गारंटी है कि कोई व्यक्ति ना ले, पक्का हर व्यक्ति लेगा। और आप ये इसलिए मत करिए कि आप बुक दे रहे हैं या बुक सेल कर रहे हैं, आप इसलिए करिए क्योंकि आप उसका जीवन बदलना चाहते हैं, आप उसको मित्र बनाना चाहते हैं। और मित्र जो होता है वो कभी गलत सलाह नहीं देता, सच्ची सलाह देता है। तो आप उनको देंगे तो फिर क्या होगा, उस कम्युनिटी में, उस ऑफिस में, उस जगह में सारे भक्त बन जाएंगे। तो नेवर टेक एसोसिएशन, ऑलवेज गिव एसोसिएशन, है ना। देना चाहिए, देने की आदत डालो। लोग पैसा भी नहीं देना चाहते हैं, बोले प्रभु जी चला गया तो कल क्या होगा। श्रील प्रभुपाद कहते हैं हमारे जीवन का अर्जित 70% धन बैंक में रखा रह जाता है। सच बात है कि नहीं, जब हम शरीर छोड़कर जाते हैं 70% बैंक में रह जाता है और कभी यूज नहीं होता हमारी लाइफ टाइम में, फिर भी हम क्या लगे हैं और। हिज होलीनेस राधा गोविंद महाराज कहते हैं अपने प्रवचनों के दौरान कि अगर दौड़ने से कोई रईस भक्ता बन जाता तो सबसे रईस कौन होता, कुत्ता। पूरा मत मानिए, देखिए सारा दिन गली में दौड़ता है, अगर दौड़ने से कोई रईस बनता तो कुत्ता सबसे रईस होता, उसका नाम होता लक्ष्मीपति। लेकिन वो क्या है, रोड का भिखारी है, इधर से उधर भौंकता है, घूमता है, क्योंकि उसको टारगेट नहीं पता, लक्ष्य नहीं पता कि किस ओर भागना है। तो इसलिए उस ओर भागिए जिस ओर कृष्ण भावना भवित है। ठीक है, जितना धन जरूरी है अपने जीवन में उतना लीजिए, जैसे सब्जी में नमक की आवश्यकता है उतनी आवश्यकता है जिसमें सब्जी फीकी ना हो और नमकीन स्वादिष्ट बने। ज्यादा नमक गिर गया तो कैसी होती है, जहरीली होती है, खाई नहीं जाती है। और नमक नहीं होता तो भी कैसी होती है, फीकी। तो जितना नमक उतना धन की आवश्यकता है। तो सुनते तो सब है लेकिन अपनाने को कोई तैयार नहीं है। माताजी से बोलेंगे माताजी आपके सोने के कंगन भगवान को चढ़ा दो तो कितनी माताजी चढ़ाएंगी, बहुत कम। आप देखिए अगर आप ठाकुर जी को ठाकुर जी कहते हैं तो सच में उस ठाकुर के हवाले अपना सब कुछ कर देना चाहिए। जब हम करेंगे तभी तो वो हमारे लिए कुछ करेंगे। जब भौतिक संसार में आप किसी की शादी में नहीं जाएंगे तो आपकी शादी में आएगा, आप किसी के बर्थडे में नहीं जाएंगे आपके बर्थडे में आएगा, जब भौतिक संसार में नहीं हो रहा तो आध्यात्मिक संसार में कृष्ण के पास इतना समय थोड़ी कि आप उससे चीटिंग करो फिर भी आपके हर काम में हेल्प करें, नहीं, आप उनके लिए कुछ करेंगे तो वो आपके लिए भी कुछ करेंगे। लेकिन बताया गया है इसके चौथे तीसरे प्रकार के व्यक्ति होते हैं माया या अप्रहत ज्ञानम, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हर लिया गया है, जो बताते हैं भगवत गीता में जो लोग कामस्तेते हता ज्ञानम प्रपद्धन्ते अन्य देवता। तो मनुष्यों से बेहतर कौन है? जो वो लोग हैं जो देवताओं की शरण में जाते हैं, है ना, कम से कम देवी देवताओं की पूजन करते हैं। लेकिन कुछ लोग तो इतने मूर्ख हैं कि सुबह सुबह क्या सेवा करते हैं, कुत्ते लेके निकल जाते हैं रोड पे और गार्डनों में उनको घुमाते हैं। बताते हैं शिला प्रभुपाद कि अमेरिका में एक सिस्टम है, वहां पर आप अपने कुत्ते को पार्क में ले जाकर क्या नहीं करा सकते, उसे मल त्याग नहीं करवा सकते। जैसे यहां ले जाते हैं ना गार्डन में, लड़ाइयां होती है मेरे गेट के आगे तेरे गेट के आगे, होता है कि नहीं होता है हमारे एरिया में? लेकिन अमेरिका में कोई किसी के घर के आगे ले जाकर किसी गार्डन में नहीं कर सकता। क्या करना पड़ता है? एक प्लास्टिक का एक रहता है टब और छोटा सा लेके पीछे पीछे घूमना पड़ता है कुत्ते के, और जब वो सुबह मल त्याग करेगा तो उसको इकट्ठा करना है। अगर वो गिरा दिया रोड पे तो $40 फाइन होता है आज भी, $40। आप सोचिए आज $40 को मल्टीप्लाई करें रुपए से तो कितना रुपया बनता है, ₹2,000 फाइन है एक कुत्ते ने अगर रोड पे मल त्याग कर दिया अमेरिका में। सब कुछ हम अमेरिका का अगर अपनाना चाह रहे हैं तो ये भी अपनाना चाहिए हमको, है ना। तो देखिए कि क्या सेवा करने को तैयार है, भगवान की सेवा नहीं करेंगे। इसलिए शिला प्रभुपाद कहते हैं कि DOG जो है डॉग, इसके बिल्कुल विपरीत क्या आता है, GOD गॉड, बिल्कुल विपरीत। इसीलिए रखा है कि इतना गिर जाएगा व्यक्ति कि कुत्ते की सेवा करने को तैयार है लेकिन भगवान की सेवा करने को तैयार नहीं, है ना, पीछे पीछे घूमते हैं। तो कौन है मालिक? आदमी बोलता है ना कुत्ते का मालिक कौन है, लेकिन असलियत में देखा जाए तो मालिक कौन है, कुत्ता या मालिक? अरे मल कौन किसका उठा रहा है, वो उठा रहा है। तो मालिक कौन है? मालिक वो है जो कर रहा है और वो है नौकर जो उठा रहा है। तो हाँ, लोग नौकर बनने को तैयार है, और अगर नौकर ही बनना है तो किसका बनना चाहिए, दास ही बनना है तो किसका बनना चाहिए, कृष्ण का। क्यों नहीं हम कृष्ण दास बने, क्यों हम उदास बने और कुत्ते के दास बने? इसलिए बेटर है कि हम भगवान के दास बने। कहते हैं कि कोई मुझसे दुखी तो कोई तुझसे दुखी, कहते हैं कोई मुझसे दुखी कोई तुझसे दुखी और थोड़े थोड़े सभी दुखी, कोई धन ना मिलने पर उदास है लेकिन सुखी कृष्ण के दास। सुखी हमेशा आप कृष्ण के दास रहते हैं, इसलिए कृष्ण दास बने, कुत्ते के दास ना बने खास करके। लेकिन ये बात माया अप्रहत ज्ञानम, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है ना, उनको समझ नहीं आती। एक बार ऐसे ही उपदेश देने के लिए, लोग प्रवचन करने के लिए कुछ भिक्षुक हैं, पुराने जमाने में होता था लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता है, कि क्या करते हैं जब ब्रह्मचारी जीवन को अपनाते हैं या संन्यास जीवन को अपनाते हैं तो भिक्षा मांगने जाना पड़ता है घर घर। और क्या करते हैं, गृहस्थ जीवन का कर्तव्य है कि जब उनके घर कोई सन्यासी या ब्रह्मचारी या कोई भिक्षुक या साधु आए तो उसको क्या करना चाहिए कि आइए महाराज, आइए स्वामी, आइए प्रभु, आप हमको कुछ संदेश दीजिए और हम आपको क्या देंगे, भिक्षा देंगे। तो उनका तो कर्तव्य है प्रवचन करना, भगवान के नामों का गुणगान करना। तो प्रवचन करते हैं घर घर जाकर, और जो व्यक्ति है वो क्या करता है, कुछ धन या कुछ गेहूं या चावल या कुछ प्रसाद उनको ऑफर करता है। तो इसी तरह से एक बार क्या हुआ, एक साधु आए और गृहस्थ जीवन के घर के आगे आकर बोले गृहस्थ के आगे कि माया माँ मुझे भिक्षा दो, माँ मुझे भिक्षा दो। तो माँ अंदर से निकली और बोली लीजिए महाराज ये गेहूं आज आपके लिए हमने रखे थे और कुछ संदेश दीजिए। तो उन्होंने देखा कि वो अपने पति और अपने बच्चों से बहुत आसक्त है ना वो औरत, और बोली जल्दी दीजिए, अंदर मेरे पति मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से कुछ उपदेश दीजिए। तो बोले देखो ये चीज जल्दी में समझने की नहीं है, मैं कल आऊंगा और फिर कल तुम्हें संदेश दूंगा। तो फिर वो कल आए दूसरे दिन, तो औरत से फिर बोले माँ भिक्षाम देगी, माँ मुझे भिक्षा दो। और जब वो अंदर गई औरत तो अंदर से क्या लेके आई, खीर, चावल की खीर लेके आई और बोली कि आज महाराज आपके लिए हमने खीर बनाई है, चावल की भोग लगाया है, इसे ग्रहण कीजिए और कुछ संदेश दीजिए। तो उन्होंने कहा कि ये कमंडल है, इस कमंडल में क्या करो, अपनी खीर डाल दो। तो जब वो डालने लगी तो देखा उस कमंडल के अंदर गोबर कूड़ा करकट सब भरा हुआ था। तो वो औरत बोली कि महाराज मैं कहां खीर को डालूं, इसके अंदर तो गोबर कूड़ा करकट भरा हुआ है, मैं खीर डालूंगी तो खीर सारी खराब हो जाएगी, उस खीर का स्वाद नहीं आएगा, तो आप पहले इसको साफ कर लीजिए। बोले बस यही संदेश देना चाहता था। आपके भी दिमाग में क्या है, माया का कूड़ा करकट गोबर भरा हुआ है, पहले आप उसको निकालो तब ये जो कृष्ण नाम खीर के जैसा स्वाद है तभी जीवन में आएगा। अन्यथा लोग क्या करते हैं, उसी गोबर कूड़ा करकट से भरा हुआ, माया से भरा हुआ मस्तिष्क, उसमें भर भर के खीर डालते हैं हरिनाम की, और फिर क्या कहते हैं, हरिनाम झूठा है, हरिनाम धोखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि अभी माया से बहुत आसक्ति है ना। इसलिए लेकिन चिंता मत करिए, जो आ सकती है वो जा भी सकती है ना। और जाने का तरीका क्या है कि भगवान से प्रार्थना करें और भगवान के सामने रोएं, गिड़गिड़ाएं और क्या बोलें, अरे
कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
लेकिन लोग क्या है, असुर, असुर बन गए हैं ना। चार प्रकार के लोगों का वर्णन यहां हुआ, असुर बन गए हैं लोग। बता सकते हैं कौन से चार प्रकार के लोगों का वर्णन हुआ, चौथे का हम कर रहे हैं असुर, तीन हम बता चुके हैं, कौन से होते हैं, मूढ़, मूढ़ और नीच, नराधम, नरो में अधम, और तीसरे माया या अप्रहत ज्ञानम, माया से द्वारा हर लिया गया है, और चौथे प्रकार के असुर है ना। सुर मतलब देवता और असुर मतलब राक्षस है ना, दानव, दैत्य। दानव पता है क्यों नाम पड़ा, क्योंकि ये महारानी दनु के पुत्र हैं, जानते हैं, दनु के पुत्र होने के कारण दानव, और दिति के पुत्र होने के कारण दैत्य नाम पड़ा, और अदिति के पुत्र होने के नाते आदित्य, भगवान के जो पुत्र है सुर देवता, उनका नाम पड़ा आदिति के पुत्र है ना, जितने भी देवता हैं आदिति माता के पुत्र। तो इस तरह से जो ये असुर हैं इनका तो बहुत ही बुरा हाल है, ऐसी प्रवृत्ति है असुरों की कि आप अगर भक्ति करना चाहेंगे तो आपको भक्ति करते में छीन लेंगे आपसे माला, आपको भक्ति करने नहीं देंगे, जोर जोर से आप कीर्तन करेंगे तो वो जोर जोर से अपना म्यूजिक चलाएंगे, भौतिक फिल्मी गाने बजाएंगे और कहेंगे अब करके दिखा भक्ति, अब करके दिखा भक्ति, ऐसे कॉम्पिटिशन का भावना रखते असुर। ऐसे एक राजा था, उस राजा ने देखा कि उसके राज्य में तीन मंत्री क्या कर रहे हैं, कुछ गड़बड़ घोटाला कर रहे हैं, तो उसने कहा कि इन तीनों को थोड़े दिन घूमने के लिए भेजता हूं। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा मुगल गार्डन था, मतलब राजा का अपना पर्सनल गार्डन, तो उसने तीनों मंत्रियों को बुलाया और बोला, आपने कभी मेरा मुगल गार्डन देखा है, मेरा अपना पर्सनल पार्क गार्डन जिसमें फल फूल पेड़ है। उन्होंने कहा, नहीं महाराज, मैं चाहता हूं कि आप एक दिन का अवकाश छुट्टी लें और जाकर वो गार्डन घूम के आए। तो उसने जब जा रहा था तो एक बड़े बड़े थैले दिए, एक थैला, दो थैला, तीन थैला, तीनों को एक एक थैला दिया, थैला समझते हैं ना, बैग, और वो बोला कि जाइए और जाकर वहां से फल फूल लेकर आइए मेरे लिए और घूम के भी आइए। तो सब बोले ठीक है, तो मैं देखूंगा कि किसने कितने फल इकट्ठे किए। तो जब एक मंत्री गया तो उसने क्या किया, ताजे ताजे फल घूमने लगा, ढूंढने लगा, और पेड़ों पर चढ़ चढ़कर फल तोड़ता था, और ऊपर पेड़ पर, और ऊपर पेड़ पर। तो सारे कहते थे ये पता नहीं क्या हो गया इसको, राजा का बड़ा करीबी बनना चाहता है ये, जो कि चढ़ चढ़कर क्या कर रहा है, फल तोड़ रहा है, जो फल खराब है उसे छोड़ देता है और अच्छे फल की तलाश में और ऊपर डाल पे जा रहा, ऊपर से गिरेगा तो अभी पता चलेगा कितना ऊपर जाना फायदेमंद रहा। दूसरे ने क्या किया कि क्या सड़े सड़े फल नीचे भर लिए और ऊपर चार पांच ताजे फल डाल दिए। बोला महाराज के पास इतना टाइम थोड़ी है जो कि अंदर तक पूरा चेकिंग करेंगे, क्या करता हूं मैं, ये ऊपर ताजे ताजे फल डाल लेता हूँ, नीचे सड़े सड़े फल डाल लेता हूँ इसके लिए, वरना मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ऊपर चढ़ना पड़ेगा। और जो तीसरा मंत्री था वो तो और होशियार निकला असुर प्रवृत्ति का, उसने कहा राजा ने कौन सा खाना है, राजा तो वो खाएगा जो उनका पर्सनल कुक लेकर आएगा, वो कौन सा हमारा गार्डन से चुना हुआ फल खाएंगे, तो क्या करता हूं, नीचे पड़ी हुई घास ऊपर भी हाथ क्यों उठाऊं, नीचे जो घास पड़ी है उसी से उसने सारा थैला भर लिया, घास कूड़े पत्ता जो भी पड़ा था। बोला राजा तो भरा हुआ थैला देखेंगे, जिसका ज्यादा भरा फूला हुआ उसी को बोलेंगे ये ग्रेट है, देखो अच्छा कलेक्ट करके लाया है, तो मैं बस ऐसे ही ऊपर से दिखा दूंगा। ऐसे ही हम भी भक्ति में करते हैं, है ना, जब हमें मौका मिलता है भगवान के नामों का जप करने का या सेवा करने का कि जाइए प्रभु जी बदरपुर बॉर्डर पर जाकर भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूट करिए सर्दी के मौसम में रात के समय, तो क्या सोचेंगे, अरे क्या जरूरत है, एक पैकेट किसी और को, पेटी किसी और को दे दूंगा और उनको बोल दूंगा कि भैया मैं बदरपुर बॉर्डर पे जाकर मैं बांट के आया हूँ, कौन देखने वाला है ना, ऐसा मन में आता है हर एक व्यक्ति के आता है, क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी है। भगवत गीता कहती है चीटिंग प्रोपेंसिटी, छल करने की आदत हमारी जन्म जन्मांतर से चली आ रही है। तो ऐसी प्रवृत्ति के कारण व्यक्ति सेवा को पूर्ण रूप में नहीं कर पाता। और फिर जब वो तीनों मंत्री वापिस आए तो राजा से बोले कि राजा जी आपके लिए हम ले आए हैं, इसको कहाँ रखना है थैले को? बोले ये मैंने अपने लिए नहीं मंगवाया, आप तीनों ने क्या किया, मेरे अकाउंट में, मेरे कैश अकाउंट में कुछ घोटाला किया, घोटाला किया, जिसके कारण मैं आप लोगों को एक हफ्ते के लिए कहां भेज रहा हूं, जेल में भेज रहा हूं। और उस जेल में खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, जो भी आपने कलेक्ट किया है बस वही खाना पड़ेगा, जो भी आपने कलेक्ट किया है, जो भी आपने इकट्ठा किया है वही खाना पड़ेगा। तो जिसने ताजे ताजे फल मेहनत से तोड़े थे उसने तो मजे से खाया, सातों दिन भर पेट, बढ़िया फ्रूट प्रसादम। और जिस व्यक्ति ने थोड़े थोड़े ताजे फल थे उसका एक दो दिन तो अच्छा चला, लेकिन आखिरी के पांच दिन उसका बुरा हाल, सड़े हुए, कीड़े पड़े हुए, वो खा नहीं पाया, उसे खुद नहीं खाया गया और उसने फेंक दिया, और ये बीमार पड़ गया कीड़े वाले फल खाने के कारण। और जो तीसरा व्यक्ति था उसके साथ क्या हुआ, उसने तो कूड़ा ही भरा था, वो पहले दिन से भूखा रहते रहते चौथे दिन अपने प्राणों की बलि दे गया, त्याग दिया और मर गया। इसी तरह से हम भी जब इस संसार में आते हैं या हम कृष्ण भक्तों की कृपा से भक्ति को प्राप्त करते हैं, लेकिन हमारे जो असुर मानसिकता है वो हमें कृष्ण चरणों में जाने नहीं देती। कई लोग हंसते हैं ये भक्तों के लिए नहीं है ये श्लोक, ये तो उनके लिए है जो प्रवचन में नहीं आते, जो मंदिर में नहीं आते, लेकिन देखा जाए तो ये हमारे लिए है। आसुरी प्रवृत्ति तो हमारे अंदर भी है ना, जब हम सेवा को पूर्ण रूप में नहीं करेंगे तो हम आसुर हैं उस समय में। तो आप देखिए कि तीन में से हमें बोला गया कि आप भगवान के नामों का जब ध्यान पूर्वक सुबह उठकर करें, सोलह माला का जब, कितने लोग सोलह माला का थैला भरना चाहेंगे सुबह सुबह उठकर, ताजा ताजा थैला नहीं भरेंगे, अरे चार सुबह डाल लेंगे किसको पता चल रहा है, दो शाम को डाल लेंगे, दो चार रात को डाल लेंगे, ऐसा ही नहीं है, डाला डाला नहीं डाला किसको पता चला, की माला नहीं की किसको पता चला। तो इसी तरह से जब हमें ये शरीर त्याग कर भगवान के घर जाना होगा तो भगवान कहेंगे कि देखो जिस प्रकार से हिंदुस्तान का रुपया अमेरिका में नहीं चलता, अमेरिका में डॉलर चलता है, वहां रुपया लेके जाएंगे तो वहां भिखारी रहेंगे, डॉलर चाहिए वहां पर, जापान जाएंगे तो वहां पर येन चाहिए, यूरोप जाएंगे तो वहां यूरो चाहिए, ऐसे जब भगवान के घर जाएंगे तो वहां क्या चाहिए, भगवान के नामों का धन, हरि नाम धन, हरि नाम संकीर्तन। और भगवान कहेंगे तुमने जितनी ताजी ताजी माला सुबह की भरी है वही बैठ के खाओ, उसी का फल प्राप्त करोगे, और जितना कूड़ा करकट पत्ते भरे हुए हैं वो फिर हमारे लिए हानिकारक होंगे। तो ये जो माला करने के लिए आपको इस कौन संस्था बोलती है या भगवान के भक्त प्रवचन में बोलते हैं, उनका अपना कोई पर्सनल फायदा नहीं है, वो किस लिए बोल रहे हैं, आप ही का थैला खाली रहेगा। तो जो अपने थैले में ताजे फल भरना चाहता है उसको क्या करना चाहिए, सुबह सुबह भगवान के नामों का जप करना चाहिए। आप देखिए कल का कोई भरोसा नहीं है, कोई कल का भरोसा, कल क्या होगा किसको पता, लोग बोलते हैं अभी जिंदगी का ले लो मजा, इसलिए मजे लेते हैं रात रात में, पता नहीं कहां बियर बार में रोड पे घूमते हैं, कल क्या होगा किसको पता, अभी जिंदगी का ले लो मजा। लेकिन होता क्या है, क्योंकि कभी कभी लोग बोलते हैं कि काम के सिलसिले में दिन भर गए, शाम को खबर आई प्रभु जी के दिन भर गए, दिन खत्म हो गए, दिन समाप्त हो गए। जब हम पैदा हुए तभी भगवान ने हमारी सांसें, हमारा एक एक पल काउंटेड लिखा हुआ है, कल क्या होगा हमें मालूम नहीं है, इसलिए आज का दिन जी लें। ज्यादातर लोग कंप्लेन करते हैं कि प्रभु जी जब हम माला करते हैं तो हमारी आठ माला पास्ट में होती है, कल हमने क्या क्या किया, या हमने पहले क्या क्या किया था, हमारे इसी जन्म में जब हम भक्त नहीं थे क्या क्या किया था, आठ माला पास्ट में चलती है पूर्वकालीन माला, और फिर आठ माला भविष्यकालीन, क्या करेंगे, आज क्या करूंगा, शाम को क्या करूंगा, परसों क्या करूंगा, दो साल बाद क्या होगा, अगर मैं इस तरह भक्ति करता रहा तो मैं भक्ति में कुछ कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, वो भक्त आगे निकल गया, पांच आठ माला पूर्वकालीन, आठ माला भविष्यकालीन, लेकिन वर्तमानकालीन माला जीरो। तो इसलिए 16 माला में से जितने भी माला करें उसमें बस एक ही प्रयास करें कि वर्तमानकालीन माला हो, आज मुझे भगवान को प्रेम पूर्वक पुकारना है ना, क्या करना है, भगवान को प्रेम पूर्वक पुकारना है। एक शायर का गजल चलता था, वो बोलते थे क्या न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, बोल सुना है आपने, ऐसे एक गजल थी। और तो मेरे को लगता है कि वो शायर को तो नहीं मालूम था कि क्या करना चाहिए, लेकिन भक्तों को मालूम है कि कि ये जो प्रवचन वो लिखा गया कवि के द्वारा, इसका इस्तेमाल कृष्ण भावना भवित में होना चाहिए। न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, मतलब कहां हमारा जीवन खत्म हो जाए, पता नहीं कल सुबेरा होगा कि नहीं होगा। न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, चलो भक्तों मन लगा हरि नाम हो जाए। अभी क्या करना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो देखिए बस भगवान के नामों की शरण लीजिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस? किसी का कोई प्रश्न नहीं है, बढ़िया है प्रभुजी, तो बहुत अच्छा हो गया। हाँ है तो पूछिए ना।
जैसा कि आपने बताया प्रभुजी नराधाम के बारे में,
माई कृष्ण, हाँ जी हरे कृष्ण,
नराधाम के बारे में बताया। नराधाम मनुष्य जो होते हैं, हाँ, जो साहित्य लिख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं,
हाँ,
तो जैसे साहित्य जो बाजार में मिलते भी है, जो मतलब आध्यात्मिक कह सकते हैं, जो किसी के द्वारा लिखे गए हैं, चाहे वो अलग तरीके के पुरुष हैं, महापुरुष हैं, जो भी हैं, तो क्या वो भी उसी श्रेणी में आते हैं?
हरे कृष्ण। क्या नाम है प्रभु जी आपका?
हरिओम।
हरिओम प्रभु जी की जय। हरिओम प्रभु जी, एक्चुअली क्या है कि जो दूसरे के द्वारा साहित्य हो या हमारे द्वारा साहित्य हो, सिर्फ एक चीज का भेद है, क्या कि कोई भी साहित्य या कोई भी शब्द या कोई भी प्रक्रिया अगर कृष्ण भावना भवित बनने में सहायता नहीं देगा, अनुकूलस्य प्रतिकूलस्य वर्जनम, अनुकूलस्य संकल्पस्य प्रतिकूलस्य वर्जनम। जो अनुकूल है परिस्थिति उसको ग्रहण करें, और जो प्रतिकूल है, जो हमारे विपरीत है, हमें भक्ति में आगे नहीं बढ़ा रही, उसको त्यागें। हो सकता है कि कोई चीज हमें भक्ति में आगे बढ़ने में मदद करे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, साहित्य को पढ़ा जा सकता है। लेकिन वो साहित्य जो कृष्ण तक ना लेके जाए, वो बताया गया ना कि कौन है जो भगवान की शरण ग्रहण नहीं करता। हो सकता है किसी व्यक्ति ने इस्कॉन ज्वाइन ना किया हो, लेकिन वो कृष्ण की शरण लेना चाहता हो। लेकिन क्या होता है, जब मैंने काफी सारे साहित्य के बारे में पढ़ने का प्रयास किया, लेकिन ओवरऑल जब देखते हैं तो वो कहना इधर उधर घूम रहे हैं, उनको एक्चुअली मालूम नहीं है कि क्या है। तो एक्चुअली क्या है, कलयुग के बारे में सिर्फ वर्णन दो ही शास्त्र कर पाए, एक तो भगवत गीता और एक श्रीमद् भागवतम। तो आप इसको पढ़ सकते हैं, चाहे स्पॉन का हो या कहीं का भी हो, तो आपको वो लेकर कृष्ण तक ही जाएगा, है ना। लेकिन लोग जो बोलते हैं, बोलने में वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं वो जो समझते हैं, है ना, और उनके समझने में अगर फेर हुआ तो हमारे को भी फेर देंगे, घुमा देंगे रास्ते में। इसलिए जिसने ऑलरेडी वो चीज अचीव करी है, जैसे कोई बिजनेसमैन है, उसने 1,000 रुपए से बिजनेस शुरू किया और आज वो 1 करोड़ रुपए कमाता है, और आप भी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं 1,000 रुपए से, तो आप किससे पूछेंगे? और भी तो बिजनेसमैन है, लेकिन उसी से पूछना चाहेंगे जिसने 1,000 से 1 करोड़ प्राप्त किए हैं, क्योंकि आप भी अपने 1,000 से 1 करोड़ बनाना चाहते हैं। लेकिन आप उनसे पूछेंगे जो 1 करोड़ नहीं बना पाए, 1,000 से हो सकता है 1 लाख ही बनाए हो, तो वो भी बिजनेसमैन कहलाएंगे, लेकिन क्या होगा, वो आपको 1 करोड़ तक लेके नहीं जाएंगे। तो ऐसे कृष्ण तक जाने के लिए कृष्ण भक्तों या जिन्होंने कृष्ण तत्व को समझा है, उन्हीं की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी, या उन्हीं के द्वारा लिखे शास्त्रों को ग्रहण करना पड़ेगा। अन्यथा अगर कोई ऐसा कर रहा है तो आप उसकी शरण ग्रहण कर सकते हैं। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न?
प्रभु जी, जैसे अभी आपने बोला कि जब हम माला करते हैं या भक्ति सिस्टम करते हैं, तो हमको पास्ट के और फ्यूचर के ख्याल आते हैं, तो सेम मेरे साथ भी है सही, तो फ्यूचर प्रेजेंट के लिए क्या करना चाहिए?
हरे कृष्ण। देखिए, एक सचिनंदन स्वामी महाराज ने बोले, सचिनंदन स्वामी महाराज जो अपने चैंटिंग सेमिनार्स में बताते हैं कि पास्ट और फ्यूचर, पूर्व और भविष्य के बारे में चिंतन नहीं करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, हर एक शब्द को सुनने का प्रयास करना चाहिए। जब हम बोले हरे कृष्ण, तो जो हम बोल रहे हैं उसको सुनने का प्रयास करें। जब हम बोलकर सुनेंगे तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि हम यहां से यहां इतना ही कनेक्शन रख रहे हैं, इसको तो हमने शट डाउन किया हुआ है, बंद किया हुआ है, पहला। दूसरा, अगर आता भी है कोई चीज याद आती है, तो पूर्व का तो बंद हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन फ्यूचर का आएगा कि आज मुझे शाम को, है ना, बिजली का बिल भरना है, हरे कृष्णा बिजली का बिल हरे कृष्णा बिजली का बिल। तो क्या करें, ऐसे समय में वो बताते हैं कि एक पेपर लें और उस पेपर में पेन निकालें, और मैं जो यूज करता हूँ ज्यादातर, मेरे साथ भी होता है ऐसा, पहली माला में बहुत सारे एकदम से थॉट, जो काम पेंडिंग पड़े थे काफी दिन से वो भी सारे याद आएंगे, लिस्ट बन जाएगी। तो वो कहते हैं जब लिस्ट बनी रही है तो उसका यूज करो, माला को साइड रखो, पेपर लो, पेन लो, सारे आइटम लिख लो क्या क्या काम याद आ रहे हैं, और उसके बाद उठा के माला कर लो। अब तो काम यहाँ आ गए ना, फिर आप दिमाग में नहीं रहेंगे, क्या वो पेपर पे आ गए, आपने यहां से उठा के उन्हें यहां रख दिया। तीसरी चीज कि जितनी जल्दी हम माला करते हैं 4 से 6 के बीच में, उस समय हमारा दिमाग सोया हुए अवस्था में होता है, माइंड है ना, जैसे बच्चे होते हैं घर के, जब आपने देखा सुबह सुबह वो सोके उठते हैं तो कैसी स्टेट में होते हैं, शैतानी कम करते हैं, 1-1.5 घंटे बाद जब एक्टिव हो जाते हैं तब, तो शाम को जब खेल रहे होते हैं, इसी तरह से माइंड बच्चे के समान है। सुबह सुबह 4 से 6 सोया हुआ होता है, फिर 6 से 8 में थोड़ा एक्टिव, 8 से 10 में थोड़ा एक्टिव, 12 बजे नहीं करने दूंगा, नहीं करने दूंगा, नहीं करने दूंगा, माला बेकार है, सब कुछ छोड़ दे, ये सब बेकार है, और रात शाम के 4-7 बजते ही जब रजोगुण बढ़ेगा और तमोगुण में तो बुरा ही हाल है, रात को तो कहेगा क्या कर रहा है अपने जीवन के साथ, सो जा, सोना जरूरी, एक माला नहीं करेगा तो क्या होगा, एक कल कर लियो, कल कर लियो, ये आवाजें आती है। ये क्या, रजोगुण तमोगुण का प्रभाव जब बढ़ेगा तो माला नहीं होगी। और सुबह क्या होता है, सभी भक्त माला कर रहे हैं, सभी देवी देवता माला कर रहे हैं, तो उस समय अपने आप ही ऑटोमेटिकली सत्वगुण होता है। आप कभी सुबह उठे तो कितना अच्छा लगता है ना, ठंडी ठंडी हवा होती है, तो उस समय मन करता है व्यक्ति का, आप देखो जो लोग भक्त भी नहीं ना वो बैठ जाएंगे ओम करने लगते हैं ना, ये अंदर से आवाज आती है परमात्मा, है ना। तो वैसे ही क्या होता है, सुबह का समय चुने, याद करने की बजाय बोले और सुने, और तीसरा जो याद है उसको लिखे, तो ये 3 कार्य करने से हमारा। और कोई प्रश्न किसी का, कोई माता जी का प्रश्न आए। श्री श्री राधा गोविंद भगवान की जय, श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय, पद पावन श्रील प्रभुपाद की जय, लता लताय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। हरे
काफी 7 से 9 बजे का समय है, प्लीज सारे लोग मिलना है।